ईरानी संस्कृति और कला।
मित्रों, ईरानी संस्कृति और कला की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहरदादी और अख्तर अब्बास का सलाम स्वीकार कीजिए।
मित्रों, पिछले कार्यक्रम में हमने बताया था कि ईरान के विभिन्न नगरों में विशेष प्रकार के किले बनाए जाते थे। हर नगर और उसकी शिल्पकला और निर्माण शैली वास्तव में विभिन्न कारकों के अंतर्गत होती थी। अर्थव्यवस्था, संपन्नता, मौसम, भौगोलिक स्थिति, संस्कृति व धर्म जैसे विभिन्न कारक हैं जो किसी क्षेत्र की विशेष निर्माण कला को आकार व रूप प्रदान करते हैं।
ईरान में पहाड़ी क्षेत्रों में बनाए गए किलों में प्रायः बिना कटाई के पत्थर होते थे जो पहाड़ों से या फिर नदियों से लाए जाते थे। इन पत्थरों को चूने से मजबूत किया जाता था। पहाड़ी किले के बाहर गहरी खाई होती थी ताकि दुश्मन के लिए खाई को पार करके किले में प्रवेश संभव न हो। दीवारों और बुर्जों के छोर पर धनुष चलाने वालों के लिए कंगूरे बनाए जाते थे जहां वो दुश्मनों पर तीर बरसाते थे।
इन किलों में शासक का आवास टीले के ऊपरी हिस्से पर होता था और लोगों के घर, भंडार, बैरक और मस्जिद आदि निचले हिस्सों में और मुख्य द्वार से निकट बनाए जाते थे। हर युग और हर क्षेत्र में बनाए गए किलों में एक विशेष समानता होती थी, वो ये है कि उन्हें दूरस्थ क्षेत्रों में बनाया जाता था और क्षेत्र के सबसे ऊंचे स्थान पर उनका निर्माण किया जाता था ताकि उनकी सुरक्षा आसान हो। ईरान में शिल्पकला के इतिहास में किलों के निर्माण में विभिन्न शैलियों का प्रयोग नजर आता है। ईसा पूर्व काल में ईरानी गांवों के चारों ओर दीवार भी होती थी, लेकिन बाद में चार दीवारी बनाने की परंपरा खत्म हो गई और केवल किले ही बनाए जाने लगे।
अलमुत किला ईरान का सबसे अधिक प्रसिद्ध किला है। ये किला एक ऐसे पहाड़ पर स्थित है जो अत्यधिक खतरनाक खाइयों के साथ है। ये दुर्ग, जो आशियानाए उकाब या बास के घोंसले के नाम से भी जाना जाता है, पहाड़ पर 2100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। चारों ओर से दुर्ग खाइयों से घिरा हुआ है और इसमें प्रवेश का एकमात्र मार्ग उत्तरी छोर पर है। यह किला कज़वीन नगर के निकट रुदबार अलमुत क्षेत्र में स्थित है। इस किले को इस्माइलिया विचारधारा के कारण ख्याति मिली, जो वर्षों तक इस विचारधारा के शासकों का मुख्यालय रहा। ऐतिहासिक किताबों में अलमुत किले को जेल भी कहा गया है, लेकिन पुरातत्वविदों के अध्ययनों से पता चलता है कि विभिन्न युगों में समाज के उच्च लोगों ने इस किले में जीवन व्यतीत किया है।
स्थानीय लोग अलमुत किले को हसन का दुर्ग भी कहते हैं। ये दो भागों से मिलकर बना है। पश्चिमी भाग जो अधिक ऊंचा है वो बड़ा दुर्ग या ऊपरी दुर्ग कहलाता है। पूर्वी भाग को छोटा दुर्ग या निचला दुर्ग कहा जाता है। ये दुर्ग 120 मीटर ऊंचा है जबकि इसकी चौड़ाई 10 से 35 मीटर के बीच है। इसकी दीवारों को पत्थर और चूने से बनाया गया है। दुर्ग के दक्षिणी भाग में पहाड़ में एक कमरा बनाया गया है जो पहरेदारी के लिए प्रयोग होता था। पश्चिमी भाग में पानी एकत्रित करने के लिए तीन छोटे भंडार और कई कमरे थे जो अब खंडर बन चुके हैं। किले के दक्षिणी भाग में पत्थर का एक जल भंडार है जिसे अगर खाली किया जाए तो धीरे धीरे फिर से भर जाता है, जिसे यह अनुमान लगता है कि हौज के नीचे पहाड़ों से रिसने वाला पानी या फिर पाइपलाइन मौजूद है।
किले का निर्माण करने वालों ने बड़े कलात्मक अंदाज में पानी के भंडार बनाए हैं और पहाड़ में बहने वाले नालों की सहायता से बहुत दूर से पानी को इन भंडारों तक पहुंचाया है। दुर्ग के पानी की मुख्य आपूर्ति कलदर नामक सोते से होती थी जो इसके उत्तर में स्थित है। किले में रहने वालों को इसी व्यवस्था द्वारा पानी पहुंचाया जाता था। ये व्यवस्था पूरे साल काम करती थी, यहाँ तक कि सर्दियों में भी कि जब ठंड की वजह से पानी के जम जाने का खतरा होता था।
दुर्ग के निर्माण में पत्थर, चूने, ईंट, टाइल और पक्की मिट्टी का प्रयोग किया गया है। किले में प्रयोग होने वाली ईंटें चौकोर हैं और उसकी लंबाई और चौड़ाई 21-21 सेंटीमीटर है। इन ईंटों की मोटाई 5 सेंटीमीटर है। इन्हें सजाने के लिए प्रयोग किया गया है। दीवारों के निर्माण में मजबूती के लिए लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। कुछ भागों में टाइलों की सजावट भी दिखाई देती है जिसके अवशेष मिले हैं। इस किले से टाइल का एक टुकड़ा मिला है जिसका रंग आसमानी है और उस पर मानव आकृति बनी हुई है। किले में एक रोचक चीज एक सुरंग का होना है। किले के प्रवेश द्वार पर 6 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 2 मीटर ऊंची एक सुरंग पहाड़ों के पत्थरों के बीच बनाई गई है। इस सुरंग से गुजरने के बाद दुर्ग का दक्षिणी बुर्ज और उसकी दक्षिणी दीवार जो पत्थर की एक ढलान पर बनाई गई है प्रकट हो जाती है। किले में एक बड़ा पुस्तकालय भी है जिसमें हजारों किताबें विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध हैं।
प्रसिद्ध इतिहासकार और भूगोल शास्त्री हमदुल्ला मुस्तौफी ने इस किले के बारे में कहा है कि अल्मोद दुर्ग का निर्माण वर्ष 2046 हिजरी कमरी अर्थात 860 ईस्वी में किया गया और वर्ष 483 हिजरी कमरी में अर्थात सन 1093 में इस पर हसन सभा का नियंत्रण हो गया और वर्ष 654 हिजरी कमरी तक ये इस्माइली समुदाय के शासकों के नियंत्रण में रहा, जहां से इस्माइलिया विचारधारा का प्रचार व प्रसार किया गया। वर्ष 654 हिजरी कमरी अर्थात सन 1256 ईस्वी में इसे हलाकू खान के आदेश पर जला दिया गया, किंतु ईरान के प्रख्यात इतिहासकार अता मलिक जुवेनी ने उस पुस्तकालय से अति मूल्यवान किताबों को अलग करने की अनुमति प्राप्त कर ली। इस प्रकार उन्होंने कुरान मजीद की प्रतियों, प्राचीन किताबों और खगोल शास्त्र संबंधी यंत्रों को अलग कर लिया, किंतु बाकी किताबें और पुस्तकालय के अन्य साधन आग में जल गए।
इसके बाद अल्मोद दुर्ग को निर्वासन क्षेत्र और कारावास के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। सफवी शासक शाह तहमास्ब सफवी के शासनकाल के आरंभिक काल तक दुर्ग का ढांचा सही सलामत था। बाद में इस पर गिलान व मजंदरान के शासकों का नियंत्रण हुआ और उन्होंने इसकी मरम्मत कराई। काजार काल में खजाने की तलाश में अल्मोद दुर्ग में जो खुदाई हुई उसने इसे गंभीर क्षति पहुंचाई।
ईरानी इतिहासकार अता मलिक जुवेनी ने जिस पहाड़ पर अल्मोद किला बनाया गया है उसे उस ऊंट की तरह बताया है जो बैठकर अपना सिर जमीन पर रखे हुए हो। कहते हैं कि एक दैलमी राजकुमार ने शिकार के समय अपना बाज उड़ाया और वो बाज उड़कर इसी पहाड़ पर बैठ गया तो उसने किला बनाने का आदेश दिया।
अल्मोद किला हसन सबाह के नाम से जुड़ा हुआ है और इस तरह से कि अल्मोद का नाम सुनते ही मन में हसन सबाह का नाम उभरने लगता है। इसलिए कार्यक्रम में इस भाग में हम संक्षेप में हसन सबाह के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालने का प्रयास कर रहे हैं। हसन सबाह लगभग 90 वर्ष तक जीवित रहे। उन्होंने सल्जूकी शासन काल में और 11वीं सदी के अंतिम और 12वीं सदी के आरंभिक वर्षों में जीवन व्यतीत किया। उनका और उनके अनुयायियों का धर्म इस्माइलिया था जो एक इस्लामी विचारधारा है। इस मत का केंद्र मिस्र था और मिस्र के फातिमी शासकों ने इस मत को देश का सरकारी धर्म घोषित किया था। हसन सबाह रे के रहने वाले थे और वर्षों तक निशापुर और मिस्र में शिक्षा प्राप्त की और फिर इस्माइली मत उन्होंने अपना लिया। उन्होंने ईरान वापसी के बाद अपनी बोलने की प्रभावशाली कला की बदौलत बहुत से लोगों को अपना अनुयायी बनाया اور پھر الموت شیتر پر حملہ کر کے الموت کے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے ایران کے کئی قلعوں پر قبضہ کیا۔ حسن صبا اپنے ویرودھیوں کی ہتیا کر دیا کرتے تھے۔ ان کے انویائیوں دوارا مارے جانے والوں میں ایران کے پرسدھ منتری اور بدھ جیوی خواجہ نظام الملک توسی کا نام بھی لیا جا سکتا ہے۔ اس مت کے انویائیوں کی گتیویدھیاں لگ بھگ 95 ورشوں تک جاری رہیں اور حسن صبا کے اتراادھیکاریوں نے بھی ان کی ہنسک شیلی کو جاری رکھا، یہاں تک کہ ہلاکو خان نے ان کا انت کر دیا۔
حسن صبا کی جیونی بھاتی بھاتی کے قصے کہانیوں سے بھری ہے، جن میں پرسپر ویرودھاباس بھی پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ انہیں ناستک کہتے ہیں، جبکہ کچھ انہیں ایسا مسلمان کہتے ہیں جو اپنی راہ سے بھٹک گیا ہو۔ حسن صبا نے چونکہ نیا مت بنایا تھا اور عباسی اور سلجوقی شاسکوں سے شترو تھے، اس لیے ایران کے بھیتر ان کے بہت ویرودھی تھے۔ ان کے انویائیوں کی گتیویدھیوں سے ایرانی سماج میں بہت تناؤ پھیل گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حسن صبا ایکانت واس میں رہتے ہوئے سوئم کو قلعے تک سیمت کرنے پر مجبور ہو گئے تھے اور وہ وہاں سے باہر نہیں نکلتے تھے۔
الموت قلعے میں اسماعیلیوں کی پانی کی جل آپورتی کی ویوستھا بہت مضبوط تھی اور وہاں کھیتی ہوا کرتی تھی، اس لیے اس مت کے انویائی ورشوں تک اس قلعے پر ادھیکار جمائے رہے، کنتو انتتہ آنترک بھرشٹاچار اور باہری ویرودھ کے کارن ان کا وناش ہو گیا اور وہ سب ختم ہو گئے۔